Hare Krishna, our fortune to listen again His grace, Rukmini Krishna Prabhuji, in Srimad Bhagavatam, 4th canto, 22nd chapter, and 14th verse on 24th
November 2006.
भवत्सु कुशला प्रश्न
आत्मरामेषु नेष्यते
कुशला यत्र
नासंति मति वृत्तया
महाशयो
आपका
कुशल
तथा
अकुशल
पूछना
व्यर्थ है,
क्योंकि
आप
नित्य
आध्यात्मिक आनंद में
लीन रहते हैं।
आप में
कुशल
तथा
अकुशल
की
मानसिक वृत्तियाँ
नहीं पाई जाती।
श्रीचैतन्यचैतन्यमनोष्टूतले स्वयं रूपा कदा मह्यंसिक वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे
हरे कृष्ण आपका स्वागत है। तो ये श्लोक है पृथु महाराज चार कुमारों से कह रहे हैं कि आपका कुशल या कुशल पूछना तो व्यर्थ है, क्योंकि आप हमेशा आध्यात्मिक आनंद में लीन रहते हैं। कुशल अकुशल अच्छा बुरा सुख दुख लाभ हानि ये जो द्वैत है ये केवल इस भौतिक जगत का लक्ष्य है। आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु एब्सोल्यूट लेवल पे है। तो एब्सोल्यूट मीन्स परम स्तर पे, वहां पे अच्छा बुरा कुछ नहीं है, वहां केवल अच्छा ही अच्छा है। लैटिन भाषा में गॉड शब्द का जो गॉड शब्द है वो लैटिन भाषा से आया है और गॉड शब्द का अर्थ है ऑल गुड। उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई कलमश नहीं है। सो कृष्णा इज ऑल गुड। कृष्णा सर्व मंगलकारी है, कृष्णा हमेशा शुभदा है, शुभकारी है। कृष्ण में कोई अशुभता नहीं है। ना ही कृष्ण में, ना ही कृष्ण की भक्ति में, ना ही कृष्ण के भक्तों में, ना ही कृष्ण के भक्तों के संग में कभी कुछ अशुभ हो सकता है, हो ही नहीं सकता। अगर अशुभ होगा तो उसका मतलब वो भगवान नहीं है, वो आध्यात्मिक नहीं है। हम सब भगवान की शक्ति हैं, जीव। तो जीव भगवान की शक्ति है, तो या तो ये महामाया के शरण में रहता है या योग माया की शरण में रहता है। इस समय हम लोग बद्ध अवस्था में हैं, इस भौतिक प्रकृति में फंसे हुए हैं, और इस भौतिक प्रकृति में फंसे होने के कारण, प्रकृति के तीन गुणों के खेल के कारण, हमें कभी कुछ स्थितियां शुभ लगती हैं, कुछ स्थितियां अशुभ लगती हैं। तो वही चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, एई भाल एई मन एई सब भ्रम, कि आज बहुत अच्छा हो गया मेरे साथ, आज अच्छा नहीं हुआ, प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए सब अच्छा हो जाए, कोर्ट में हम केस जीत गए सब अच्छा हो गया, बिजनेस चल पड़ा डील हो गई सब बढ़िया हो गया, केस हार गए अशुभ हो गया, किसी घर में कोई मृत्यु हो गई अशुभ हो गया, बच्चे का जन्म हुआ शुभ हो गया, ये सब भ्रम है। कोई शुभ नहीं है, कोई अशुभ नहीं है, भौतिक जगत क्या है, सब अशुभ है, सब अशुभ। ये तो ऐसा हुआ अगर हम बोले कोई शुभ अशुभ है कि आज अच्छा सपना आया आज बुरा सपना आया, क्या वैल्यू है। अच्छा सपना आ गया कि मैं करोड़पति बन गया, उठे तो क्या हो, कुछ नहीं। बुरा सपना आया कि ट्रेन मेरे सिर के ऊपर से निकल गई, उठे सब ठीक है क्या है? तो ये सब सपना है, ये सब सपना है, वास्तविकता से बिल्कुल आत्मा असंग्रह नहीं, अयम पुरुषो, आत्मा का इस सपनों से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इस भौतिक जगत को भगवान की सेपरेटेड एनर्जी, भिन्न प्रकृति बोली जाती है, भिन्न भगवान से अलग। जैसे ये भगवान से अलग हो गई, इनऑस्पिशियस हो गई, अशुभ हो गई। अगर इसमें भगवान नहीं है, गॉड इज ऑल गुड, नो गॉड नो गुड, कृष्णा इज ऑल गुड, गॉड मीन्स ऑल गुड, नो गॉड नो गुड, बिना कृष्ण के परिस्थिति के कोई भी स्थिति शुभ हो ही नहीं सकती, और जहां कृष्ण है वो स्थिति अशुभ हो ही नहीं सकती। हमें जो दिखने में लगता है शुभ अशुभ, ये सब मन का भ्रम है, ये सब मन का भ्रम है। इस बात को समझना अति आवश्यक है, खासकर हम जैसे साधक भक्तों के लिए, क्योंकि जब हम भक्ति में जुड़ते हैं हमें कई तरह के तकलीफें सहन करनी पड़ती हैं। भक्ति में जुड़ने का अर्थ यह है कि जिस ढंग से हमारा शुद्धिकरण शुरू होता है, शुद्धिकरण शुरू होता है ना, भक्ति का समान महाराज अपनी पुस्तक में उदाहरण देते हैं कि हृदय का शुद्धिकरण होना उसी के समान है जैसे कमरे में बहुत गंदगी पड़ी है और कई सालों से हमने कमरा साफ नहीं किया, तो सारी की सारी जो धूल है मिट्टी है एक जगह सेटल्ड है सब, जैसे उसमें झाड़ू लगाना शुरू करते हैं तो स्थिति पहले से ठीक हो जाती है खराब हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है। आप ऊपर से नीचे धूल से भरे आते हो, सारा धूल धूल, बोले से अच्छा छेड़ना ही नहीं थे क्या, जबरदस्ती का ही काम कर लिया, तो उस समय व्यक्ति और परेशान होता है, उसको लगता है इसे गंदा ही रहने देता अच्छा था। इसलिए जैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भक्तों का संग शुरू करते हैं, तो अंदर एक सब उत्पन्न बन जाती है, मन का शुद्धिकरण शुरू होता है, हमारे अनर्थ हमारे सामने आके प्रकट होते हैं, हमें लगता है कि क्या अंदर गंदगी है, तो व्यक्ति जिसे कहते हैं कंफर्टेबल नहीं रहता, तो बोलते हैं क्या हो रहा है मेरे साथ, जब से हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू किया कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है, तो लगता है इससे पहले तो अच्छा यही था कि मैं भक्ति में नहीं था, इग्नोरेंस इज ब्लिस, आनंद से पाप करता था, कोई समस्या ही नहीं थी, जब से ऐसे आया हर चीज में वहम हो गया, ये भोग लगा हुआ है नहीं है, एक अपराध ना हो जाए, यहाँ साफ कर लू हाथ धो लू क्या कर लू, ये प्रसाद नहीं है, सब वहम हो गया है, घर वाले भी कहते हैं कि बार बार नहाता है क्या हो गया इसको, पागल तो नहीं हो गया बच्चा, सर्दियों में भी दो तीन बार नहा रहा है क्या हो रहा है इसको, तो उसको हर स्थितियां उसके दोस्त बदल जाते हैं, संग बदल जाता है, भक्तों के संग में भी जाता है तो अच्छा नहीं लगता, तो सब परेशानी है, तो लगता है क्या है, ये सब कहने की बात नहीं है क्या, चैंपियन भी है थी। तो लेकिन घबराने की बात नहीं है, अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो ये सफलता की निशानी है, असफलता की निशानी है, सफलता की निशानी है, इसका मतलब द प्रोसेस इज वर्किंग, इसका मतलब दवाई काम कर रही है, आपका शुद्धिकरण हो रहा है। तो इससे हमारे आत्मविश्वास बढ़ जाना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। कमरे की सफाई हो रही है, झाड़ू लग रहा है, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल ऑस्पिशियस कृष्ण है। और लेकिन हम इससे हम घबरा गए और भक्तों के संग के छोड़कर चले गए तो क्या होगा, सब अशुभ ही अशुभ होगा। इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। जहां कृष्ण से संबंध छूटा, भक्तों से संबंध छूटा, एवरीथिंग इज इन ऑस्पिशियस। ये बात हमें अच्छी ढंग से समझ आनी चाहिए। देखिए, जब साधारण स्थिति में हम बोलते हैं, कोई व्यक्ति आशीर्वाद मांगता है भौतिकवादी साधु से कि साधु जी आशीर्वाद दीजिए कि सब शुभ ही शुभ हो जाए, तो वास्तव में क्या ढूंढ रहे हैं? भौतिक सुख। भौतिक सुख का अर्थ क्या हुआ? धन और इंद्रिय, धन ढूंढ रहा। और क्या भौतिक सुख के अंदर क्या क्या आता है? धन ढूंढ रहा है, यश ढूंढ रहा है, सुंदरता ढूंढ रहा है ना, बल ढूंढ रहा है, ज्ञान ढूंढ रहा है। तो देखा जाए सारे ऐश्वर्य ढूंढ रहा है। तो षट ऐश्वर्य पूर्ण कौन है? केवल कृष्ण है। कृष्ण इज ऑल वेल्थ, ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज, ऑल फेम, ऑल पावर, ऑल रिनंसिएशन, ऑल। कृष्ण के अलावा इनका कोई अस्तित्व नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि कृष्ण इस ब्रह्मांड के सबसे धनी व्यक्ति है, ये कहना ठीक है क्या? ठीक है माता जी कि कृष्ण इस ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा सुंदर व्यक्ति है? ठीक है स्टेटमेंट? कितने लोग कहते हैं स्टेटमेंट ठीक है कि कृष्ण इस ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति है, कृष्ण इस ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा यशस्वी व्यक्ति है, कृष्ण इस ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति है? ये ठीक है स्टेटमेंट? ठीक है प्रभु जी, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। गलत इसलिए है कि माना कृष्ण सबसे, हाँ, कि कृष्ण ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति हैं, मतलब एक दो धनी व्यक्ति और भी हैं। तो कंपैरिजन किया गया, बैलेंस शीट देखी गई, बैंक बैलेंस देखा गया, तो माना गया कृष्ण सबसे ज्यादा है, कि कृष्ण सबसे ज्यादा सुंदर व्यक्ति भी, और कोई भी उनकी सुंदरता से कॉम्पिटिशन हो रहा है तो कृष्ण मिस्टर यूनिवर्स डिक्लेयर हो गए। कृष्ण से किसी का कोई तुलना ही नहीं है। ही इज ओनली ऑल, ही इज ओनली ब्यूटीफुल, ही इज ओनली नॉलेजेबल, ही इज ओनली स्ट्रेंथ, बलवान वही है और कोई नहीं है। यस ऑल। तो इसका मतलब हम शुभता ढूंढ रहे हैं, शुभता का अर्थ हम इन चीजों को ढूंढ रहे हैं, यानी को कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, यानी कि जहां कृष्ण होगा वहां अपने आप शुभता हो जाएगी। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जैसे ही हम भौतिक इच्छाओं से शून्य हो जाते हैं, ये सारे के सारे ऐश्वर्य हमें स्वतः प्राप्त होते हैं। जैसे ही हम भौतिक इच्छाओं से शून्य हो जाएंगे, ये ऐश्वर्य हमें स्वतः प्राप्त होंगे, क्योंकि जो सोल है वो दैट इज नेचुरली ब्यूटीफुल, एटर्नली ब्यूटीफुल। सोल इज एटर्नली ब्लिसफुल, एटर्नली नॉलेजेबल। इस सारे के सारे ऐश्वर्य सोल को अपने आप प्राप्त होंगे, क्यों? कृष्ण का अंश है, तो ऐश्वर्य तो हमारे पास है ही है। हमें अपने आप को भौतिक आवरणों से मुक्त करना है बस, तो अपने आप सब शुभता प्राप्त हो जाएगी। और हम लोग ये भूलकर इस भौतिक जगत में शुभ को ढूंढते हैं, वो कभी प्राप्त नहीं होता। अक्सर लोग दिवाली के दिन आस पास दुकानों में क्या ले लेते हैं? शुभ लाभ। तो उनसे पूछा जाए, ना उनको शुभ का मतलब मालूम है, ना लाभ का मतलब मालूम है, दोनों ही गलत है। कृष्ण का कहीं नाम नहीं है तो शुभ हो नहीं सकता। लाभ क्या है? बहुत ही अपने लाभ है ही नहीं। इट्स ऑल लॉस, लॉस, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड, मृत्यु का सब समय सब खत्म हो जाएगा। ना शुभ है ना लाभ है, बोला अशुभ हानि, अशुभ हानि, अशुभ हानि। दिवाली की जगह दिवाली निकल जाएगा। कुछ भी शुभ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है इस भौतिक जगत में। अगर कृष्ण है तो शुभ ही शुभ है और लाभ ही लाभ है, और कृष्ण नहीं है तो सब अशुभ है। यही बात भगवान गीता में अर्जुन कह रहे हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा, कि इस जगत में हर चीज विपरीत ही विपरीत है, हानि हानि। मैं जीतूंगा तब भी हार है, हारूंगा तब भी हार है। तो हम सब भक्तों को इस बात में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इस बात को हम समझ जाएंगे कि कृष्ण भक्ति इज ऑल ऑस्पिशियस, को हम कभी भी भक्तों के संग को नहीं छोड़ेंगे। किसी भी परिस्थिति में हम भक्तों के संग को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि भक्तों का संग शुभ है, हमारे अंदर दृढ़ता आ जाएगी ये बात। क्योंकि लोग भक्तों का संग क्यों छोड़ते हैं कि भक्त लोग मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं रहे, मेरे को सही मान नहीं दे रहे, मेरे प्रति अपराध कर रहे हैं या मुझसे अपराध हो रहे हैं, तो छोड़कर चले जाएंगे। इससे अच्छा तो बाहर का ही दुनिया है। तो बाहर की दुनिया में तो कुछ है ही नहीं, वो तो सपने में जा रहे हो, वो तो सपना है। ये सच्चाई है, बाहर की दुनिया तो कुछ है ही नहीं ना, दुनिया ही नहीं, वो सपना है। तो मूर्खता होगी सपने में जाना, ये सच्चाई है, रियलिटी, इसको फेस करना है। तो ये हमारे अंदर पूरा कन्विक्शन हो जाएगी, कम व्हाट मे, मैंने भक्तों के संग को नहीं छोड़ना। यही हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भक्तों का संग ना छूटे। भक्तों के संग में रहेंगे सब शुभ ही शुभ होगा। दिखने में कुछ घटनाएं अशुभ हो सकती हैं, लेकिन वो हमारे शुद्धिकरण के लिए है। अब दिखने में जब भगवान कृष्ण वृंदावन में थे तो इंद्र ने कितनी अशुभ बात कर दी, समर्थक बादलों को बोला जिससे प्रलय होती है, बोला जाओ इसको करो, खत्म कर दो सबको। लेकिन वो अशुभ घटना नहीं थी, शुभ घटना थी। क्यों शुभ घटना थी? क्योंकि वो और ऑस्पिशियस कृष्ण के समीप आए और शरणागत हुए। कितने बड़ा संकट आया था, देखो कितना बड़ा संकट आया था। इसी ढंग से श्रील प्रभुपाद झांसी में लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे थे, खबर पहुंची कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। किसी बिजनेसमैन को बताया जाए लालाजी आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, वो यूं हाथ मारेगा सर पे, क्या हो गया है ना। और प्रभुपाद ने हाथ मारा, लेकिन यहां हाथ मारा आनंद आ गया। प्रभुपाद ने कहा बहुत आनंद आ गया, बोले ना यस्य अहम अनुग्रहम हरिष्ये तद धनशनय, कृष्ण तुम्हारा काम समझ गया मैं, अब तुम चाहते हो कि मैं सबको छोड़कर पूर्ण रूप से शरणागत हो जाऊं। तो उनको उनकी फैक्ट्री में आग लग गई शुभ लग रहा है, क्योंकि ये उनका दृष्टिकोण है। देखिए कृष्ण भक्ति कितनी ऑस्पिशियस है। तो इसलिए हर परिस्थिति में हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, बिल्कुल विचलित नहीं होना है। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ऑल ऑस्पिशियस, और कृष्ण भक्ति हम छोड़ के जाएंगे तो हमारा कोई भी इसमें लाभ नहीं है। श्रील भक्तिसिंह सभी ठाकुर महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन है, दिस ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर अटेनिंग ऑल ऑस्पिशियसनेस, केवल इस मनुष्य जीवन में ही हम शुभ पूर्ण रूप से शुभ हो सकते हैं। और ये शुभता प्राप्त होगी, भक्तिसिंह सभी महाराज कहते हैं, अपने गुरु महाराज के चरणों की सेवा करके। बिना गुरु के चरणों की सेवा करके हमारा शुद्धिकरण नहीं हो सकता, और हम इस शुभ स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो गुरु के चरण कमल है, विच इज द सोर्स ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस, वो सारे के सारे शुभता के स्त्रोत्र है। तो इसलिए ये मनुष्य जीवन मिला है गुरु की सेवा करके, गुरु की सेवा करके हम हर प्रकार के संकटों से अपने आप को बचा सकते हैं। इसीलिए जब भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन कृष्ण को शनागत करते हैं तो विष्णुचंद्र ठाकुर बात कहते हैं कि यार शनागत क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हें स्वर्ग का लोक भी प्राप्त हो जाएगा, तुम जीत जाओगे और तुम्हें स्वर्ग का लोक भी मैं दे दूंगा, लड़ो। तो अर्जुन ने बोला नहीं नहीं मुझे स्वर्ग का लोक नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं जान गया हूं चाहे मुझे स्वर्ग का लोक भी मिल जाए मुझे सुख प्राप्त नहीं हो सकता। कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव पिछा मिताम धर्म संपूर्ण चेता यथ निश्चितम रूहित शीशस्ते हम शादी माम प्रबंधम। कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव कि इस कृपणता के कारण, कमजोरी के कारण मैं अपना धर्म भूल गया हूं, मैं नहीं जानता कि क्या ठीक है क्या गलत है। शीशस्ते हम शादी माम त्वम प्रबंधम, अब मैं आपका शिष्य बन गया हूं, जो मेरे लिए शुभ कार्य हो श्रेयस कर हो मुझे बताइए। तो बिना गुरु की सेवा किए, बिना प्रमाणिक गुरु की शरण में जाए हमारे जीवन में कुछ भी शुभ नहीं हो सकता। तो हमें अपने आप को इस सपने से जगाना पड़ेगा, जीव जागो, जीव जगाना पड़ेगा कि बिना प्रमाणिक गुरु की सेवा किए हमें जीवन में कुछ भी शुभ नहीं हो सकता। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और मनुष्य जीवन मिला ही केवल इसीलिए है कि हम अपने जीवन में सब कुछ शुभ प्राप्त कर सके। इसीलिए अगर हम सब लोग अब प्रमाणिक गुरु की शरण में आ ही गए हैं, श्रील प्रभुपाद जी की शरण में आ ही गए हैं, तो अब पूरे उत्साह के साथ हमें गुरु के सेवा में जुट जाना चाहिए। देखिए हम सब यही चाहते हैं ना कि हमेशा सुखी रहें, सब कुछ अच्छा हो हमारे साथ, सब कुछ शुभ शुभ हो, तभी होगा जब हम गुरु की सेवा में जुड़ेंगे। बस इसके अलावा सब भ्रम है। भौतिक जगत में जो उन्नति होगी, जो आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं, सबका सब भ्रम है, बहुत बड़ा सपना है। तो हमें सपने में नहीं फंसना और अपने आप को उठाना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब अपने अंतरंग पार्षदों के साथ कीर्तन करते थे तो बाहर के लोगों को अलाउ नहीं करते थे। तो एक ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया कि क्या समझते हैं अपने आप को, पता नहीं क्या करते रहते हैं अंदर। तो जब सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु गंगा में स्नान करने गए तो उस ब्राह्मण ने अपना जिनेव निकाला और जिनेव निकाल के बोला कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें कोई भौतिक सुख लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोला हरि बोल हरि बोल, ये आपने श्राप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया है कि बहुत ही ज्यादा सुख है ही नहीं, अच्छा हो गया मेरा सपना, मैं कभी सपने में जाऊंगा ही नहीं। श्री राधा राधिका रमन भगवान की। तो ये जो सुख है यहां श्री प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं कृत्रिम है, ये सारी की सारी आवश्यकताएं कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। आत्मा को मर्सिडीज गाड़ी नहीं चाहिए, आत्मा को एयर कंडीशनर नहीं चाहिए, आत्मा को अच्छा अच्छा खाना नहीं चाहिए, आत्मा को मैथुन का सुख नहीं चाहिए, आत्मा को केवल चाहिए कृष्ण की शरण। कृष्ण की शरण प्राप्त करते ही सब कुछ शुभ हो जाएगा। और कृष्ण की शरण प्राप्त करने का अर्थ है प्रामाणिक गुरु की सेवा करना, उसी से हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये आज का लेक्चर हम यही पे विराम देते हैं। वैसे कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकता है।
प्रामाणिक गुरु कौन है?
प्रामाणिक गुरु कौन है? प्रामाणिक गुरु है, सबसे पहले प्रामाणिक गुरु को प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ा होना चाहिए। चार संप्रदाय बताई गई हैं पद्म पुराण में, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। अगर हमारे गुरु जी का संपर्क इन चार से किसी संप्रदाय में से नहीं है तो वो प्रामाणिक नहीं है। ये बातों में हमें इमोशनल या सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, है ना, कि हमारे गुरु जी तो बहुत अच्छे हैं, हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है। कुछ भी हुआ हो आपके जीवन में बदलाव भी आ सकता है, लेकिन आप कृष्ण से नहीं जुड़ सकते, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते अगर हम प्रामाणिक गुरु की शरण में नहीं है। गुरु के क्या लक्षण होते हैं? गुरु का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि गुरु आपको कृष्ण के दर्शन कराएगा। गुरु का कृष्ण से सीधा संबंध है, गुरु का कृष्ण से सीधा संबंध है। गुरु कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं कृष्ण हूं, गुरु बोलेगा कि हम सब कृष्ण के दास हैं। तो इस आजकल इस बौद्धिक जगत में बहुत से गुरु हैं जो कृष्ण की कथा करते हैं, लेकिन हमें बहुत सावधान होना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि अगर वो प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं है तो ये कोई सेंटिमेंटल इशू नहीं है कि वो हमारे कुल गुरु हैं, कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत उन्होंने भला किया हमारे साथ, हमने उनसे मंत्र भी ले रखा है, दीक्षा भी ले रखा है। आपको जानकर हैरानी होगी, नारद पंचरत्न में बताया गया है कि अगर हमने किसी प्रामाणिक गुरु से दीक्षा नहीं ली है तो वो लोग नर्क हो जाते हैं। तो तुरंत हमें प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। कई लोग इसीलिए फंस जाते हैं, वो समझ भी जाते हैं कि हमारे गुरु प्रामाणिक नहीं है, बोले दीक्षा लेके कैसे छोड़ दें, वो दीक्षा है ही नहीं। दीक्षा का मतलब दिव्य ज्ञान जिससे अंधकार का नाश हो। वो दिव्य ज्ञान दे ही नहीं सकते क्योंकि दिव्यता से संपर्क ही नहीं है। तो बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए, तुरंत हमें प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। प्रामाणिक गुरु कम से कम ये पहला लक्षण उसका है कि चार संप्रदायों में से किसी एक में से जरूर होना चाहिए। मन साफ होना चाहिए, किसी का बुरा ना करो, भला करो, मतलब इनको पता ही नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या शुभ क्या अशुभ। एक अमीर व्यक्ति शराब पीने जा रहा है, देखा एक बाहरी व्यक्ति रो रहा है दुखी, वह बोला शराब पीने के पैसे नहीं है, दया आ गई उसके अंदर, पैसे लो शराब पियो, उसने अच्छा कर दिया, उसने अपने हिसाब से अच्छा किया, किसी को रोते हुए नहीं देख सकता, दिल पिघल गया मेरा, शराब नहीं पी पा रहा है, ले लो। तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया उसने, तो लोगों को पता नहीं क्या अच्छा क्या बुरा, यही भाल यही मंद यही सब भ्रम, ये अच्छा है ये बुरा है सब भ्रम, कृष्ण से जुड़े हुए नहीं है सब भ्रम है। जो कृष्ण भक्ति में नहीं है इसे आजकल मूर्ख है धूर्त है।
They have that notion that if you are going to this place, so you might take a sannyas, something that people think. They said the main work of us is to look after our family, for the kids and all that.
सही बात है, हमारा मुख्य काम है, बिल्कुल सही बात है, हमारे जीवन का लक्ष्य ही होना चाहिए अपने परिवार की देखभाल करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, परिवार की देखभाल करना। नहीं, परिवार के मुखिया कौन है? कृष्ण। परिवार के सदस्य कौन है? सारे जीव, सारे जीव। तो सही है, हमारे जीवन का लक्ष्य यही है परिवार की देखभाल करना। होंगे नहीं ना माता जी कन्विंस, होना नहीं चाहते, भ्रम में है, उनको पहले शेक करना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा उनको, शॉक थेरेपी देनी पड़ेगी, तब जाके उनको होगा। शॉक थेरेपी के बाद ही वो सीखते हैं, या प्रकृति शॉक देगी या कोई भक्त उनको शॉक देंगे, साधु काटेंगे उनको तब मालूम चलेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे फूक मारने से काम नहीं चलेगा।
गुरु की सेवा किस रूप से की जाती
है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न कि गुरु की सेवा किस रूप से की जानी चाहिए। गुरु की सेवा दो रूप से होती है, मफू सेवा और वाणी सेवा। मफू सेवा में जब भी हमें गुरु जब तक इस धराधाम में है, ये हमारा बहुत सौभाग्य है, तो अवसर ढूंढने चाहिए कि कब हम उनका जा सेवा बापू रूप में संग कर सके, उनके जो बापू की शरीर की आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा करने में कुछ मदद कर सके, बापू सेवा। और दूसरा है वाणी सेवा। वाणी सेवा मतलब कि गुरु की जो वाणी है वो हमारे लिए हमारा जीवन होना चाहिए। आप देखा जाए, समय कम है, बहुत कुछ कहा सकते हैं, श्लोक के ऊपर बहुत कुछ कहा सकता है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु को अपने हमें आत्मा समझने चाहिए, क्योंकि इससे पहले तो हम सो रहे थे, हम सपने में थे, गुरु आके हमें उठाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शिलाके, गुरु आके हमें अज्ञानता के अंधकार से हट उठाते हैं। तो वास्तविक जीवन हमारा दीक्षा के बाद शुरू होता है, हमारा जो जन्म है वो दीक्षा से शुरू होता है। वास्तविक जो जीवन है वो प्रमाणिक गुरु की शरण में आने के बाद शुरू होता है, उसके से पहले हम सो रहे हैं। तो इसलिए गुरु की जो भी वाणी है उसको हमें अपना जीवन समझकर सब कुछ निछावर करके उस वाणी का पालन करना चाहिए, उसमें अपना मनोधर्म नहीं लगाना चाहिए। ठीक है,
पता चलेगा कि जो गुरु है वो प्रमाणिक संप्रदाय से ही है,
तो मालूम चलेगा, आप पूछेंगे मालूम चल जाता है कौन से संप्रदाय से, जैसे इस्कॉन है ब्रह्मा द कोरिया संप्रदाय से,
फिर भालू भी बोल सकता है कि मैं इस संप्रदाय से हूं,
तो मालूम चल जाएगा सर। इसके लक्षण होते हैं, हर एक संप्रदाय में लक्षण देखा, किस तरह का तिलक है, किस तरह की वेशभूषा है, क्या फिलॉसफी है, क्या शास्त्र है, उनके सब मालूम। तो ये बहुत जरूरी है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि प्रमाणिक गुरु की शरण में जाकर हमारे जीवन में कुछ शुभ नहीं हो सकता। और प्रमाणिक गुरु के लिए ढूंढने में अगर हमने पहले कोई गुरु धारण कर रखा है और वो चार संप्रदायों में से नहीं है, तो नारद पंचरात्र के अनुसार हम नरक गामी होंगे। तो इसमें कोई भी सेंटिमेंटल विषय नहीं है,
बहुत डरते हैं प्रभु जी अगर धारण किया
डरते हैं, डरना चाहिए कि नरक में जाने से डरना चाहिए कि नरक में जाने से डरना ही चाहिए। तुरंत रिजेक्ट करके तुरंत प्रमाणिक गुरु शरण में जाना चाहिए। हाँ, दीक्षा लेनी चाहिए तुम्हारा।
भागवतों के अनुसार देखा जाए तो 11वें स्कंद में प्रमाणिक गुरु के लक्षण बताए गए हैं,
बिल्कुल
कैसा होना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल,
शास्त्र की कसौटी पर कस करके देखे कि हमारे गुरु में लक्षण है नहीं है। गुरु आदमी त्याग सकता है लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं, प्रमाणिक और शास्त्र शास्त्र पारंगत
त्याग दिया।
तो इसलिए इसमें घबराना नहीं चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम सर्वोत्तम आनंद को प्राप्त करें, वो तभी प्राप्त होगा जब हम प्रमाणिक गुरु के शरण में जाएंगे, अन्यथा हम अपने सपने में जीवन जीते रहेंगे। ये सपना है, बाकी सब सपना है, ये सारा का सारा भौतिक जगत एक सपने के समान, उसी में नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं, पूरा एक फिल्म चल रहा है। प्रभुपाद कहते हैं पूरा सिनेमा के समान है, पूरा सिनेमा चल रहा है, एक सिनेमा खत्म हुआ फिर दूसरा रोल ले लिया, कभी हम पुरुष बनते हैं, कभी स्त्री बनते हैं, कभी पशु बनते हैं, कभी पक्षी, अलग अलग रोल धारण कर रहे हैं, उसमें नाच कूद कर रहे हैं बस। और आत्मा इससे बिल्कुल अलग है, देखिए कितनी भयंकर स्थिति है, हम ऐसे अपना आत्मा सपनों में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। तो उठाना है तो गुरु हमें जगाते हैं, और जैसे जागेंगे सब शुभ ही शुभ है। तो जब बच्चा सो के गहरी नींद से उठते हैं तो वो रोता है कि क्या है, कि किधर आगे, कंफ्यूज होता है सब क्या हो रहा है, तो वही हमारे साथ अभी हो रहा है। जाग रहे हैं थोड़ा नींद में, थोड़ा जाग रहे हैं तो अजीब सा लग रहा है, क्या हो रहा है, इससे अच्छा तो सोए हुए अच्छे थे, भक्ति ना ही करते अच्छे थे। लेकिन जागना पड़ेगा, पूर्ण रूप से जागृत होना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी तो जागृत होगा। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में भक्ति में आने के बाद विचलित नहीं होना है हमें, भक्तों के संघ को कभी छोड़ना नहीं है, गुरु के चरण कमलों को कभी छोड़ना नहीं है, यही केवल शुभ है, इसको छोड़ते ही सब कुछ अशुभ हो जाएगा। आप सबका बहुत धन्यवाद। आज आप सबसे प्रार्थना है कि परम निगेते श्री कृष्ण संकीर्तनम, आज एक ऐसा अवसर है, हमें सेवा करने का मौका मिला है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, कि हमारे ऊपर कजाकिस्तान में भक्तों के ऊपर प्रहार किया गया, उनसे मारपीट की गई, मंदिर को तोड़ दिया गया, जैसे कि 520 वर्ष पूर्व चांद काजी ने भक्तों को पीटा था और मृदंग को तोड़ दिया था, तो चैतन्य महाप्रभु लाखों भक्तों को लेकर उन्होंने मार्च निकाली थी, तो पहला वो वैसे आंदोलन था, मार्च निकाली गई सिविल डिसोबीडियंस, उसी ढंग से आज हमें अवसर मिल रहा है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में कि हम सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़कर आज जाएंगे हम लोग वसंत विहार कजाकिस्तान एम्बेसी के सामने, केवल आधे घंटे का प्रोटेस्ट करना है, उसके बाद हम सब लोग अपने ऑफिस में व्यवसाय में जा सकते हैं। तो सबको चलना है और प्रसाद बाकी अभी 10-15 मिनट में बस खड़ी है, बात 8:30 बजे 8:30 बजे हम निकल जाएंगे और पहुंच के वहां पे हमें इस आंदोलन में भाग लेंगे। तो आप सबसे निवेदन है सब सबको खोइए मत और जा से भक्तों के साथ चलिए। ऐसा कोई मार धाड़ नहीं करनी, नारेबाजी नहीं लगानी, हरि नाम लेना है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। ग्रंथा श्रीमद भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गाय गौर प्रेमानंद अनंत कोटि वैष्णव की।